के प्रति किसी का यदि थोड़ा सा भी अनुराग हो तो उस अनुराग को वो बहुत समझते हैं। थोड़ा सा भी कोई वस्तु उनको दे दें, जैसे पत्रम पुष्पम अलमतोरियम जो मे भक्त्या प्रयच्छत तदहम भक्तु भक्तम स्नामी प्रचलता। जो लोग बड़े प्रेम के साथ में, बड़े प्रयत्न के साथ में कुछ भी नहीं रहने पर पत्र पुष्प सूखा तंदूर का टुकड़ा फल सबरी का फल सुदामा वित्र मंगनी मानकर खुद ले गए, हो सकता है उस खुद में धान के टुकड़े भी और लेकर के गए। और कृष्ण ने उसको क्या माना, अब इसके बदले में मैं मेरे पास में कुछ नहीं देने को है, क्यों? उनके तो घर में कुछ नहीं था, वो मंगनी मांग करके ले गए, कृष्ण को कुछ मंगनी मांगना नहीं, सारा ऐश्वर्य इनके पास में है, मंगनी मांग करके तो देंगे नहीं, अब इनको क्या इसके बदले में दें? और सब कुछ भी इनको दे करके, सब कुछ तो नहीं थोड़ा सा कुछ दिया, और सोचा ये लज्जा से जो इसको आमने सामने नहीं देना चाहिए, इसलिए लज्जा बसत रात में उनको उनके अलक्षित रूप में ये सबको उनको, और फिर भी अपने को मानते जी मैंने कुछ नहीं किया। इसी प्रकार से भगवान के लिए जो थोड़ा सा भी साधन करते हैं, कृष्ण के लिए सचमुच में घर बार स्त्री पुत्र परिवार सबको छोड़, रुपया पैसा मान अपमान सब छोड़ करके जो कृष्ण के लिए थोड़ी सी भी छोड़ करके आते हैं, अभी भजन पूरा भी नहीं हुआ, कृष्ण कहते हैं कि मैं उनको कदापि नहीं छोड़ सकता। इस तरह से थोड़ी भी चीज यदि ये कर रही है श्रीमती राधिका, कृष्ण में ऐसे सब गुण हैं जो हम लोग उनकी सेवा कुछ नहीं कर पाते तभी इसको बहुत मानते हैं और अपने ऋणी बन जाते हैं, न पारे हम निर्वर्ते शब्द जान। और गोपियां उनसे बातचीत करना चाहती हैं श्रीमती जी, कृष्ण बहाना बनाकर वो लज्जा से बोल नहीं पाती क्योंकि उनको लज्जा अधिक होती है, बोल नहीं पाती। कृष्ण ऐसा बहाना बना करके उनसे बातचीत करते हैं, कृतज्ञता स्वीकार करते हैं और ऐसे रूप में व्यवहार करते हैं जिससे ये दिन भर रात भर स्मरण करते हैं गोपियां। कृष्ण कैसे सुंदर हैं, कैसे सुंदर बंसी बजाते हैं, कैसे कृपालु हैं, अहेतु की कृपालु हैं, और सब उनमें विशेष करके नायक के जो गुण हैं उन गुणों का ये स्मरण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु संतापे विजय, जैसे प्रणत का मधुरया गिरा कल्बु वाक्या क्षण विधि करी इमान मुह्यते मन विजतरी इमान मधुरया गिरा बल्बु वाक्या उदमनुज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी इमान वीर मुह्यते। और भी एक रहसितानम प्रेम विक्षणम व्यणं च मे ध्यान मंगलम रहस्यम विदम रहस्यम विदम। अकेंत में मिलकर के रहस्यम बड़ी मधुर 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 मीठी मीठी बातें उनसे जिसे वो स्मरण करते करते हैं। जैसे श्रीमद्भागवत में प्रेम के बदले कोई प्रेम करता है, जो प्रेम नहीं करने से भी प्रेम करता है, जो प्रेम करे ना करे किसी से भी प्रेम, ऐसा कितना सुंदर शब्द कर दिया है। यह है बुध मनुज्ञया पुष्कर क्षण पुष्कर क्षण पुष्कर मैंने बड़े कल्याणदायी बड़े प्रेम से उसके तरफ में इच्छा करते हैं, ठठोली बोली कैसे प्रेम से करते हैं, जीवन भर इसको भूल नहीं सकते। महाप्रभु जी उसी को स्मरण कर, साहब जैसे जैसे राधा जी स्मरण करती हैं, गोपियां स्मरण करती हैं, अटत इज्जत भवान, नहीं इसके बाद का अटत इज्जत भवान, इसके बाद इसके बाद अटत इज्जत भवान अन्य कामनम प्रणजुगा कृतिजुगायते ताम अपश्यताम कुटिलकुंतलम श्री मुखंते जड़ दीक्षताम पक्ष कृतिसाम जनऊ कषान व्यक्त रंग गति हाँ ये पतिसुतान्वय पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवान् अतिविलंघते अंच अंक अच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवजोषितो ये सब कितने कितने ये सी सब का स्मरण ये गोपियाँ और अंत में कहती हैं न पा रहे हम। देखो तो कैसे ये हैं कृष्ण कैसे मीठी मीठी बातों से कहा मैं तुम्हारा ऋणी हूँ कोटि जन्मों में तुम्हारा इस ऋणी को नहीं होता। इस विषय को महाप्रभु जी गोपी भाव से स्मरण कर रहे हैं और होकर के संताप में विवल कर आज कोई नहीं है, आज वो मथुरा चले गए द्वारका चले गए, अब कोई ऐसा नहीं कृष्ण नहीं है संताप नहीं होता। राय स्वरूप कंठधरी कहे हा हा हरी हरी धर्ज गेलो हरी धर चप्पल धर्ज गेलो मैंने और चप्पल हो गया मैंने धर्ज मैंने हरी क्या धर्ज राय और स्वरूप राय रामानंद स्वरूप दामोदर के कंठ को पकड़ करके कहे हा हा हरी हरी रोने लग गए और उनका धैर्य टूट गया।
दूसरा अनुभव है दूसरा अनुभव चप्पल
धैर्य चला गया। हमने जो बात नहीं करनी चाहिए जो बात नहीं करनी चाहिए उनका धैर्य टूट गया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो नहीं कहा जा सकता और उन बातों को चप्पल होकर और उसको बहुत सी ऐसी बातें होती हैं या प्रियतम में या स्त्री पुरुष में या घर में भी रहता है ऐसी बात जिसको कभी नहीं कहा जा सकता बस एकदम चंचल होकर के प्रिय सखी को पा करके बस कहने लग गए। सुनो बांधव कृष्ण है माधव सुनो सुनो बांधव हे बंधु हे सखी देखो कृष्ण की माधुरी कैसी है जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं। जार लोभ है मोर मन छाड़ी लोक भेद धर जिसके लोभ से मेरा मन धैर्य को छोड़ दिया छाड़ी लोक भेद धर लोक धर्म और वेद वेद का धर्म क्या है पति को स्त्री को पति को नहीं छोड़ना चाहिए छोड़कर किसी के भी पास में नहीं जाना चाहिए। यदि पति परदेश गया हो तो स्त्रियों को पान इत्यादि खाना श्रृंगार करना और कहीं दूर में जाना ये सब मना है और काम उसको छोड़ दिया किस लिए के का से मयूर कहता है के और वो कहती है मयूरी का राधा जी का धैर्य मान
लज्जा
ये पर्वत के समान है विशाल हिमालय के पर्वत के समान है इसको कौन चकना चूर कर देता है। क्षण मात्र में अपने बंसी से सूत हास्य से कृष्ण उसे क्षण मात्र में दूर कर देते हैं और कृष्ण जैसे मदमत्त हस्ती को कौन बांध करके उसे रख देता है शीकल में कौन श्रीमती राधिका की बात तो यही कर जार लोग हैं मोर मन छाड़ी लोक वेद धर्म लोग के जितने भी हैं धर्म क्या सच बोलो झूठ मत बोलो ये पहली चीज शास्त्र कहाँ जा रहे क्या कहेंगे सूर्य पूजा के झूठ बोलते हैं ये वेद धर्म घर के समस्त पति की सेवा का काम छोड़ करके चला जाए ये भी पति को छोड़ना ये भी वेद धर्म लोक धर्म, और इसका तृप्त वेद के सारे धर्म को इसने छोड़ दिया। योगी हो या भैरव भिखारी, ये सबको छोड़ करके योगी होकर के भिखारी। योगी होने पर बड़े बड़े राजा लोग भारतवर्ष में योगी हो गए। योगी दो प्रकार का, यहाँ पर भक्ति योगी को नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर योगी जैसे बिहार में एक योगी हो गए हैं, वो सारंगी बजा करके, तुम जानता है सारंगी बजा करके गीत गा करके भिक्षा मांगते सब करते हैं, उसका नाम कौन योगी, जैसे गोरख, हाँ गोरखनाथ, गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी कैसे बड़े राजा के लड़के और विवाहित सुंदर भार्या उच्च कुल धनाढ्य कुल के लोग उनके गोरखनाथ के गुरु कोई थे, पहले बचपन में थोड़ा सा सुना होगा, भिखारी बन गए और लोग कान में कुंडल पहन लेते हैं, शंख का, सोने का नहीं, शंख का कुंडल।
शंख का क्यों पहनते हैं?
शंख इसलिए कि वो एकदम सस्ता से सस्ता हार इत्यादि का बनता है, शंख हार है, शंकर जी जैसे कि मुंड वाला इत्यादि धारण करते हैं, शंख का कुंडल धारण करते हैं, धारण करके देश देश इसमें जाकर के भिक्षा मांगते हैं और अपना जीवन किसी प्रकार से निर्वाह करते हैं। और ऐसे योगी जो कुछ कहते हैं बस वो हो जाए, मैंने संसारिक भक्ति से कोई संबंध नहीं, ये अष्टांग योग इससे ये योगी सब, जिसको कहते मर जाए, जिसको कहते जीवित हो जाए, जिसको कहते बेटा हो जाए, ऐसे सब हाथ से जो कुछ कहें बस सब सब कुछ हो जाएगा। इस तरह से योगी होकर के जात लोग हैं मोरमा छाड़ी लोग वेद धर्म, योगी भैया राज का राज्य पद छोड़ दिया, स्त्री को छोड़ दिया, योगी बन गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी योगी बने, किंतु ऐसे नहीं कि कान में कुंडल हो, उनका कुंडल क्या था, कृष्ण की कथा ही कुंडल, और बेशक क्या था, भगवान को अर्पित किया हुआ सुन बांधव कृष्ण माधुरी। जार लोभे मोर मन छाड़ी लोक वेद धर्म, योगी हैया हैला भिखारी, सुन बांधव कृष्ण माधुरी। कृष्ण लीला मंडल शुद्ध शंख कुंडल, कृष्ण की लीलाएं जैसे वो लोग धारण करते हैं शंख में कुंडल, कुंडल शंख का, और ये भिखारी होकर के क्या करेगा, कृष्ण की लीलाओं कथाओं का मंडल माने समूह, कृष्ण की लीला कथाओं का दिन रात श्रवण करता है। शुद्ध गढ़ी आछे शुभ कारीगर, इसको किसने गठन किया, किसने निर्माण किया,
सुखदेव
गोस्वामी। बहुत तरह के इनके आभूषण है कानों के, जिसमें वेणु गीत, गोपी गीत,
जुगल गीत,
जुगल गीत,
प्रणय गीत,
अमर गीत, ये सब काम सुंदर से सुंदर कितने प्रकार के, ये बस इसी का स्मरण करते हैं। एक कुंडल काने परी कृष्णा लाऊ थाली भरी, इस कुंडल को कान में धारण करके, धारण करके ने पहले श्रवण किया, भगवान कृष्ण की लीला कथाओं को श्रवण किया, किसे सुना किया, अनुसुनियात अथ वर्णीय, इन्होंने किसे सुना, वेद्यास सुखदेव गोस्वामी, ये अपने आप निर्माण करना नहीं सीखा, और सीख करके अनुसुनिया निरंतर श्रवण किया, और इसके बाद में तृष्णा पैदा हुई, किस चीज की, मैं राधा कृष्ण की सेवा करूंगी या करूंगा, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो तृष्णा लाऊ थाली धरी, लौकी का थाल, कमंडल लौकी का बनता है, वो भी तीता कड़ुआ। कड़ुआ यदि हो लौकी, उसको पहले काट करके कच्ची स्थिति में और उसको सुखा देते हैं, फिर साफ करके जिसमें कोई कीड़ा न लगे, पानी गंदा ना हो, इसलिए उसको सुखा करके अच्छी तरह से ये। अब उसमें वो क्या करते हैं, तृष्णा, यह है तृष्णा, खाली है ना, उसी को लेकर के भिक्षा के लिए जोगी लोग जाते हैं घर घर में भिक्षा कुछ करें, भिक्षा कर, किसी ने रोटी दे दिया, किसी ने दाल दे दिया, किसी ने सब्जी दे दी, जो जरूरत है उसी को उसमें रख दिया। उसी तरह से तृष्णा रूपी लाऊ का वो पात्र धरी धारण करके आशा झूली कंधे रूप, आशा की झूली कंधे कंधे पर लटका दिया, सामने तो वो उसे तृष्णा कहते हैं, तृष्णा मैंने लोभ उत्पन्न हुआ, और लोभ होने पर अब जीवित रहता है किस तरह, आशा भरई हम सिंध मयी कथंचित कालो मया की गमिता क्लेशां कृतम हि पंचे त्रिपामयी विधास्तु सुनई प्राणई गजेन बरोरु बकारिना। आशा भरई अमृत सिंध मयी कथंचित, जब रूप गोस्वामी से स्वरूप दामोदर राय रामानंद से महाप्रभु के स्वामी मुख से रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रवण किया ब्रज की लीलाओं को, तो इनकी आशा मैंने लाख मुख धारण कर और उस रस की लीला का पान करने के लिए आतुर हो उठी। माने क्या, वृंदावनेश्वरी कदा वृंदावनेश्वरी वयोगुण रूप लीला सौंदर्य के जलधे करुणावते, वो संकल्प कल्प ध्रुम, एक ऐसा कल्प ध्रुम है, एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसमें फल लगे, कितने फल अनंत, उसके आशा कैसी है, उन फलों को पाने के लिए लाखों प्रकार के ये आशा, और जीवित नहीं रह सकती तभी अभी मिल जाएगा ये आशा से, कृष्ण मिलेंगे, उनकी सेवा मिलेगी, इसलिए जीवित रहे। कृष्ण के मथुरा जाने पर, वहां से फिर द्वारका चले जाने पर गोपियां किस लिए जीवित हैं, कल आएंगे, कृष्ण ऐसा कब करके गए हैं, यही आशा के लिए वे जीवित, नहीं तो कभी मर जाते। कृष्ण ने कहा जी मैं जरूर आऊंगा, कृष्ण जरूर आए, और यदि आ गए और हम इसी बीच में मर गए तो कृष्ण को बहुत दुख होगा, ये दुख नहीं सह सकते। इसलिए आशा भरई अमृत सिंधु मय, आशा कैसी है, यदि समुद्र अमृत का समुद्र हो कैसी, अथा आनंद गभी, ऐसी इनकी आशा की का समुद्र जो है वो अनंत है, आर पार में इतनी आशाएं, और वो कितनी गंभीर हैं, जिसका कोई अथा न था, था नहीं है जिसका, ऐसी इनकी अनंत आशाएं किसके लिए, राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति के लिए। आशा भरी अमृत सिंध मयी कथंचित कालो मया की गमिता की सांप्रतम ही, मैंने बड़ी दुख से जो अब आशा की पूर्ति हो, अब आशा की पूर्ति होने वाली है, बस इसी आशा से जीवन, किसी प्रकार से कथनचित मैंने किसी प्रकार से धारण नहीं किया जाता तो अभी प्राणों को धारण करके मैं संयोजित हूँ। पंचेत कृपा मई विधास्य से नहीं वकीनी, हे स्वामिनी जी, हे मेरी आराध्या देवी श्रीमती राधे, आप तो बड़ी दया दी, यदि आप हमारी उन प्रार्थनाओं को सुन करके हमारी उन आशाओं को पूरा नहीं करती और आप दर्शन नहीं मुझे देती तो मुझे कृष्ण से क्या जरूरत है, मुझे वृंदावन बास से क्या आवश्यकता है, मुझे राधा कुंड से भी रहने की क्या जरूरत है, और फिर इन निकृष्ट प्राणों को धारण करने की मुझे क्या आवश्यकता है। तो इस तरह से आशा की झूली, फिर कहते हैं उत्साह निश्चया धरिया, निश्चया मैंने क्या और धैर्य मैंने क्या, कृष्ण मिलेंगे ये साधक समझता है, जो कृष्ण मिलेंगे इसलिए धैर्य धारण। हम लोगों की कोई बात नहीं, हम लोग तो खाते पीते आराम से हैं, कोई भी चिंता की बात नहीं। खाते पीते पहनते हैं, सोते हैं, उठते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं कुछ, बड़े आराम के साथ। इसलिए हम लोग, ये उन लोगों के लिए है जो यथार्थ में साधक हैं, भाव के साधक हैं उन लोगों के। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी इत्यादि उत्साह निश्चय। निश्चय मैंने क्या, ये आशा रखो जरूर मिले, तो जरूर मिलेंगे, तब तक फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठे रहेंगे नहीं, तब तक कर्म प्रवर्तना भक्ति के अंगों का यथाजत पालन करें। तो आशा झोली कांदे, इसी झोली को लेकर के भक्त साधक भक्त जीवित रहता है। और जब विचार करता है कि हमें क्या मिला, तो देखता है जैसे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, किंतु तटस्थ होकर के विचार पर करने पर यह मालूम होता है कि बहुत कुछ मिला। अभी हम लोग सोचते हैं हम क्या, प्रेमर स्वभाव यही, प्रेमर स्वभाव यही, प्रेमर संबंध
जा रहे हैं ऐसे ही माने नहीं प्रेम का,
जिसको प्रेम का जितना ही उच्च प्राप्ति है वो ये समझता है कि हमें प्रेम का गंध नहीं है, यह प्रेम का स्वभाव है। श्रीमती राधिका जी कहते हैं कि कृष्ण के प्रति हमारा तनिक भी कोई प्रेम नहीं है। महाप्रभु जी ये जो ये राधिका जी की उक्ति है, महाप्रभु जी की उक्ति नहीं है। राधिका जी कृष्ण के प्रति सबसे श्रेष्ठ प्रेम राधिका जी को, और वो क्या मानती है, प्रेम का बंध नहीं। मछली को जैसा पानी से प्रेम है, हाय कितना दुर्भाग्य की बात है हमको नहीं है, होना तो चाहिए ऐसे ही, तो नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये साधक मान ले कि जैसे कोई भी साधक हो, वो कहता यह है हमें कुछ भी भक्ति का बंध नहीं है। जब वो अब खुद विचार करता है तो ऐसा देखता है, कहाँ स्वप्न में भी तो कृष्ण नहीं आता, स्वप्न में भी कोई स्फूर्ति नहीं होती, खाने में भोजन में संसार में हमें तनिक भी भयाद नहीं है, भयाद नहीं हुआ, खाते हैं पीते हैं, जब कभी चित्त द्रवित नहीं होता कृष्ण का नाम सुन करके, चित्त द्रवित नहीं होता, आंखों से स्वाभाविक रूप में आंसू नहीं आते, खेद नहीं होता, होता है कहाँ, कभी कुछ नहीं होता, ऐसे ही निरर्थक जन्म। नरोत्तम ठाकुर जी क्या कहते हैं, गोरा पहुं ना भजिया मैंने, गोरा चंद्र जी का, गौचंद्र का, जो राधा के भाव से कृष्ण ही है और प्रेम देने के लिए आए, और उनके प्रति हमारा तनिक भी प्रेम नहीं हुआ, ना भजी मैंने, तनिक में मैंने भजे। उन्होंने तो कितने खेद के साथ में ये पद्य लिखा होगा, गीत लिखा होगा, और हम लोग इसको तनिक भी, हमारे यहाँ पर एक रेखा नहीं खींचती है ऐसा पत्थर और वज्र का हृदय। गोरा बहू ना भजिया प्रेम रतन धन हेला, मैंने सजी मैंने सब खो दिया हूँ, अधने यतन करी
धन त्याग दिया,
जो धन नहीं है उसको दिए तो मैं दिन भर मरता हूं, जो धन नहीं, संसार में लस्तम पस्तम हो रहा हूं, कौड़ी के लिए मर रहा, फूटी हुई कौड़ी के लिए। जानते हैं कि इसमें एक धागा भी लेकर के, सुई भी लेकर के नहीं जाएंगे, एक केस भी नहीं जाएगा साथ में, संसार में सब कुछ रह जाएगा, और जिनके लिए मैं कर रहा हूं वो भी हमको कष्ट देंगे, ये सब कुछ समझते हैं, और ये समझते हैं कि वृद्धावस्था आ गई, इंद्रियां व्यक्त हो गई, तो भी नहीं मानता, तो भी नहीं, आ जाओ कुछ भजन करो, खाना पीना हम देंगे, घर रहने के लिए देंगे, तुम्हारे घर से अच्छा घर देंगे, जैसा चाहे आ जाओ, क्यों तुम्हारी स्त्री है नहीं, वो मर गई है, बेटा बेटा मानता है नहीं, तो यही तो दुख है, आ जाओ। अथवा स्त्री है, कैसी स्त्री है, काली कलूठी काणी, कामी कुरूपिणी स्त्री है,
कलह प्रिया,
और कलह प्रिया सब समय कठोर बात के बोलने वाली। घर में रहने के लिए एक दाना नहीं, चूहे भी घर में नहीं रहते, क्योंकि कुछ नहीं, केश पक गए हैं। गलितम मुंडम, गलितम मुंडम,
गलितम गलितम मुंडम, दंतविहीनम
दंतविहीनम, दांत भी अब नहीं रहेंगे, जानते हैं। तभी वृद्ध अवस्था में घोर कठोर करते हैं, आराम से कृष्ण का भजन करने नहीं गए। एक आदमी से गुरु जी ने पूछा, मठ में रहेगा भिखारी से, कैसा लंगड़ा, लंगड़ा भिखारी से, वो गांव में भिक्षा करता था, कोई इतना चावल कोई कुछ दे, गुरु जी ने मठ में रहेगा। इसी समय में कलकत्ते से बड़े बड़े लोग आए थे सीधाबाड़ी में गुरु जी से मिलने। गुरु जी ने कहा कि आप बहुत ठीक नहीं है, क्यों, आप समाज के क्रीम को पकड़ते हैं, अर्थात अच्छे बड़े लिखे और बुद्धिमान लड़कों को जो बड़े सुंदर होते हैं समाज के क्रीम को आप लोग लेते हैं, और गरीब निर्धन ऐसे लोगों को आप मठ में नहीं रखते, और नवयुवकों को विशेष करके बूढ़ों को भी नहीं रखते। दई बात, उसी समय में एक भिखारी आ गया और वो लंगड़ा चल भी नहीं पाता, खूब सुंदर भी नहीं, भिखारी जैसा कपड़े पहने फटे हुए हैं, भिक्षा मांगते हुए घर आया, तो मठ में भी आ गया। हम लोग वहाँ पर थे गांव में देहात, वहीं पर वो सब कलकत्ते के सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। उन्होंने बुलाया और कहा, सुनो सुनो, तू भीख मांग रहा है, घर में कोई है? नहीं नहीं नहीं, कोई स्त्री उस्त्री है नहीं, और कोई घर वर है कुछ नहीं। तो तुम एक बात करो, दिन में कितना भिक्षा लेता है, कितना ले आता है, और थोड़ा सा जी कुछ पेट के लिए ले, एक बात करो, हमारे आश्रम में आ जाओ और हम तुम्हें खिलाएंगे, कपड़ा देंगे, और तुमको कुछ नहीं करना है, बैठ करके बस हरे कृष्ण दीजिए दीजिए दीजिए, इधर उधर जाने का जरूरत, बस यही तुम कहना है, हरे कृष्ण, गले में माला दे देंगे, अच्छे कपड़े इत्यादि दे देंगे, कोई भी कुछ नहीं करना। अच्छा, मैं जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगा, नहीं जब तुम्हारा घर नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज ही सर, नहीं मैं कुछ दिन के बाद, क्यों, तुम्हारी स्त्री है,
फालतू लड़की है,
लड़की के एक शादी कर, अरे अभी तूने बदला, ये कुछ नहीं है, घर नहीं, नहीं घर तो नहीं है, किसी तरह से छप्पर डाल करके हमारी ये लड़की और हमारी पत्नी रहती है, उसकी शादी कर देते तो मैं निश्चिंत होने के बाद में आ जाऊंगा, कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इस तरह से गुरु जी ने कहा, देखिए आप लोग इसको रख लीजिए, नहीं रहा, जिनकी पूर्वजन्मों की सुकृति कुछ होगी वही रह सकता है, ऊपर से देखना ये देखा जाता है तो मालूम होता है, बात ऐसे सुंदर मकान में, ऐसे सुंदर सब व्यवस्था में, जो घर में नहीं है, बड़े ठाट बाट से रहता, तुम आ जाओ तो दिन भर परिश्रम करते हैं, मरते हैं, किंतु नहीं आते। अब कृष्ण भक्ति में हम चले महाप्रभु, महाप्रभु जी राधा भाव से निमग्न होकर के बोल रहे हैं, आशा की झूली कंधों पर ले जा, ये संसारिक आशाएं हैं, ये संसार की आशाएं कभी नहीं दूर होगी, और परमार्थिक आशा वो तो अमृत सिंधुमय, सिंधु की, अमृत के सिंधु के लहरें हैं, तरंगे हैं, बड़ी आनंद है, भक्त उसके लिए कलपता है, रोता है। चल करके अब क्या हुआ, आशा भूल लिया और क्या लिया,
चिंता कांता,
चिंता कांता, किस लिए चिंता, कृष्ण कखन मिलने, एक चिंता विशाल,
कहां जाऊं कृष्ण हरि, ये चिंता विशाल,
मैं कहां जाऊं, कृष्ण कहां मिलेंगे, मेरे हृदय दुख से फट रहा है, कहां मैं कहां जाऊं, कैसे मिले, ये चिंता विशाल, ये बड़ी चिंता है। तो वही चिंता कांता, कांता माने फटा हुआ
गुदड़ी,
गुदड़ी किस चीज की, कंथा मैंने फटा हुआ, ये क्यों कहा, भाई आशा इतनी हमारी दुराशा है, इतनी उन्नत है, जो मेरे लिए मिलना बड़ा भारी मुश्किल है। क्या बैठे हैं यहाँ पर संसार के कामों में, कामनाओं में, वासनाओं में लगे हैं और सोचते हैं कि राधा जी के बाल्यदासी, राधा कृष्ण की गोलोक वृंदावन में जाकर के उनकी हम सेवा करेंगे, ये दुराशा नहीं तो क्या है? बहुत कठिन, किसी के जो कम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसलिए गुदड़ी फटी हुई, फटी मैंने निराशा। एक श्लोक रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा है, मैं प्राचीन लोगों का भजन तब देखता हूँ, प्राचीन लोगों का भजन देखता हूँ, पुरुष सनातन ने अतुल वैभव को छोड़ दिया, उससे भी अधिक रघुनाथ दास गोस्वामी ने अतुल वैभव को छोड़ दिया।